मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 3 अप्रैल 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने जो सब्जेक्ट चुना है उसे आप कह सकते हैं सुख की चाहत। मैंने जानबूझकर इसे दुख से छुटकारा शीर्षक नहीं दिया है। दुख से छुटकारा सबसे पहले आता है। हम अगर हमारे सामने दुख हो तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हमें दुख से छुटकारा चाहिए, सुख चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन मैंने जानबूझकर इसे शीर्षक दिया है सुख की चाहत। मैंने इस विषय को क्यों चुना है फ्रेंड्स, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण इसका यह है कि मुझे इस बीच कुछ मेल मिले हैं जिसमें उन्होंने अपनी तकलीफों की, अपनी पीड़ा, अपने मानसिक संकट, अपने द्वंद्व, इन सब की चर्चा करते हुए ये अनुरोध किया है कि इस पर कुछ बात की जाए। और दूसरा, आप लोगों को मालूम ही है कि कल रामनवमी है, कहीं कहीं स्टेट में परसों भी रामनवमी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में कल छुट्टी है रामनवमी की। तो मैं अभी से ही आपको बता दूं कि कल ये जो लाइफ मैनेजमेंट है ये नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब भी गजेटेड हॉलीडे होते हैं और सैटरडे संडे को लाइफ मैनेजमेंट नहीं आता है। खैर, तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि रामनवमी का सुख की चाहत से क्या संबंध हो सकता है। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से मैंने इस विषय को चुना है। तो आइए अब हम इस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग, मुझे लगता है कि इस मायने में काफी सौभाग्यशाली थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दुर्भाग्यशाली हैं, इसे इस रूप में मत लीजिएगा। लेकिन हम लोगों के वक्त में होता यह था कि जो जीवन के प्रति जो एक समझ होनी चाहिए, नैतिकता के जो मापदंड होने चाहिए, आचरण और व्यवहार के जो पैमाने होने चाहिए, जो तत्व होने चाहिए, ये सब हम लोगों को एक तरीके से यूं कह लीजिए कि बात बात में, व्यवहार में, कहानी किस्सों के जरिए यूं ही बता दिया जाता था, या यूं कह लीजिए कि पता लग जाता था। हम लोगों के दौर में जब फिल्में आती थी तो आपको मालूम है, आप पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखिए, एक एक साल, दो दो साल तक वो फिल्में टॉकीज पे चल रही, और उस समय श्रीलंका से जो सिलोन का कार्यक्रम आता था उसमें गाने बजते थे, सप्ताह के 10 गाने बिना का हिट माला, और पता लगा कि एक ही गीत, एक ही गाना फिल्म का, और कितने दिनों तक वो चलता जा रहा है, एक ही दिन में पता नहीं वो कितनी बार सुनाई पड़ रहा है। उसका नतीजा ये होता था कि वो गाने बिना याद किए ही याद हो जाते थे, याद हो जाते थे, क्योंकि आप बार बार उन्हीं को सुन रहे हैं। इसके साथ ही होता क्या था कि मैं एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, एक अतीत के तहत आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग फिल्में देखने जाते थे तो जहां थिएटर होता था वहां एक छोटी छोटी दुकानें होती थी जिसमें फिल्मी किताबें, गाने, शेरो शायरी की चीजें बिकती थी। तो जो फिल्म रिलीज होती थी उस फिल्म में कौन कौन से गाने हैं उस पर एक बड़ी छोटी सी पतली सी अखबारी कागज पर छिपी हुई पुस्तिका, छपी हुई पुस्तिका बिकती रहती थी, चार आने में मिलती थी, आप खरीद लीजिए तो पता लगा उस फिल्म के सारे गाने आपको उसमें छपे हुए मिल गए हैं और आप उन गानों को याद कर लीजिए। और हम उन लोगों में, हम लोग जो उनको खरीदते थे और उन गानों को याद करते थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सुख की चाहत का संबंध किस तरीके से इस गाने से हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो अब मैं उसी बात पर आ रहा हूं। उस समय हम लोगों ने एक गाना सुना था मित्रों, और उसे याद भी कर लिया था, और वो ये था, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये गाना, और ये गाना पूरा याद है, मुझे अभी भी याद है, हालांकि गुनगुनाने का अवसर कभी कभी, शायद कभी कभार आ जाए, लेकिन याद है, क्योंकि वो सब चेतना में रच बस गई है। और होता यह कि कोई चीज जब आपके चेतना में रच बस जाती तो पहले तो वो चेतना के स्तर पर होती, फिर आपके अवचेतन में शामिल हो जाती है, और जैसे ही वो अवचेतन में शामिल होती है वो आपके जीवन को कंडक्ट करने लगती है, आपके जीवन का वो आधार बन जाती है। दोस्तों, इसमें राही क्या अर्थ है, राही का क्या अर्थ है? इसमें राही का अर्थ है जीवन की यात्रा करने वाले हम सब। राही इस तथ्य को इंडिकेट करता है, राही मनवा, हे वह मन जो राही का मन है, दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख की तू क्यों चिंता करता है, क्योंकि दुख तो अपना साथी, आप साथी की चिंता नहीं करते। अब आप देखिए कि ये सुख की चाहत और दुख की चिंता से किस तरीके से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके बाद फिर मैं इसे रामनवमी से जोड़ूंगा। आप दुख की चिंता करना बंद कर दीजिए, सुख आ जाएगा। सुख दूर नहीं है, क्योंकि मन में दुख की आशंका है इसलिए सुख नहीं है। आप इस पर विचार करके देखिएगा। आप कभी तटस्थ होकर, शांत बैठकर, निर्मम भाव से, इन शब्दों को ध्यान दीजिए, तटस्थ होकर अपने प्रति प्रेम, घृणा, क्रोध, स्वार्थ, प्रतिशोध, इन सब भावनाओं से मुक्त होकर के, तटस्थ होकर और थोड़ा सा निर्मम होकर के, कठोर होकर के, और सोच कर देखिए, और शांत भाव से बैठिए, उद्वेलित होकर के नहीं, चलते फिरते नहीं, थोड़ा सा समय तो दीजिए। और आप सच में लिस्ट बनाइए कि मुझे कितने दुख हैं, सच में, मतलब जो उसको एनालाइज करके बताइए कि जिसे हम अभी दुख समझ रहे हैं क्या वो सच में दुख है। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पास रोजगार नहीं है तो मैं उसे अपने दुख में शामिल कर लूंगा, लेकिन रोजगार न होना दुख नहीं है, वह एक संघर्ष का आमंत्रण है, वह कार्य करने की एक प्रेरणा है, कुछ करने के लिए आपको कह रही है, वो दुख नहीं है। हां, अगर मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं खाली पेट सो रहा हूं, वो दुख हो सकता है, लेकिन बेरोजगार होना दुख नहीं है, परीक्षा नजदीक आ जाना दुख नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में फेल हो जाना दुख नहीं है, व्यापार नहीं चलना दुख नहीं, ये सब दुख नहीं है। याद रखिए, ये तो समस्याएं हैं, समस्याएं दुख नहीं होती हैं। समस्याएं तो सुलझाने के लिए आपको कहती हैं कि मुझे सुलझाइए। क्या अगर कोई धागा उलझ गया है तो वो दुख है? आप यही कहेंगे ना कि नहीं नहीं यार, ये प्रॉब्लम है, लाओ इसे मैं सॉल्व करता हूं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फ्रेंड्स, आप लिस्ट बनाइए। और एक और भी मैं आपको खूबसूरत उपाय बताता हूं, और वो ये कि आप अपनी लिस्ट बनाने के बाद फिर एक दूसरे की भी लिस्ट बनाइए, अगर आप जानते हैं कि उसकी लिस्ट में दुख के कौन कौन से कंटेंट हैं, और फिर आप तुलना कीजिए, तो आपको लगेगा कि सच तो ये है कि दुख है ही नहीं। और जैसे लगे, या है भी तो बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़े से हैं, कम तो हो जाएंगे, और जैसे ही दुख जाएगा सुख आ जाएगा। अब हम करते क्या है दोस्तों, हम करते ये हैं कि जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे सुखी बना, मेरे दुखों को दूर कर, मुझे सुखी बना, हम ये उससे कहते हैं। अब आपको मैं राम की बात बताता हूं। फ्रेंड्स, हमारे यहां तो अवतार की अवधारणा है, राम भगवान के अवतार रहे, कृष्ण भगवान के अवतार रहे, बुद्ध को भी हम अवतार मानते हैं, अपना 10वां अवतार मानते हैं। इन तीनों के जीवन को तो देखिए, आप तीनों के जीवन को देखिए। मोहम्मद साहब तो अभी हमारे सन बहुत पुराने नहीं हैं, वो तो उनके बारे में काफी कुछ चीजें ज्ञात हैं, आप उनके जीवन के बारे में पढ़िए, जानिए, देखिए क्या इनके जीवन में सुख था। आपको देखना होगा, समझना होगा, क्या इनके जीवन में सुख था। यहां तक ईसा मसीह जी के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, आप उनको, उनके जीवन को देखिए, कहां सुख था, दुख नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुख था, मैं ये कह रहा हूं कि सुख नहीं था। और ये नहीं कि सुख नहीं था इसका मतलब था कि दुख था, दोनों बिल्कुल, हम दोनों को जोड़ देते हैं, मुझे लगता है कि गड़बड़ी वहां होती है। हम सोचते हैं कि छाया और धूप है, अगर धूप नहीं है तो छाया है, छाया नहीं है तो धूप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात को क्या होता है, रात को छाया नहीं होती है, धूप भी नहीं होता है, लेकिन रात रात होती है ना, तो वैसे एक ऐसी तो स्थिति भी तो आ सकती है ना जहां दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है। और राम वही थे, कृष्ण वही थे, मोहम्मद साहब वही थे, ईसा मसीह वही थे, नानक साहब वही थे, जितने भी साधु संत महात्मा इस तरह के आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं वो यही हैं। उनके पास न छाया है, न धूप है, न सुख है, न दुख है, उनके पास चांद नी रात है। अगर अंधियारी रात भी है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने रास्ते पर चलना जानते हैं, उन्हें किसी के उंगली के सहारे की जरूरत नहीं है। मित्रों, हम जाते हैं, हम उन अवतारों से कहते हैं कि मुझे सुख दे, और मजेदार बात यह है कि हम उन अवतारों से सुख मांग रहे हैं, अपने राम और कृष्ण से सुख मांग रहे हैं, जिन्होंने खुद अपने लिए कभी सुख की चाहत ही नहीं की, बल्कि ये कह लीजिए कि जब उनको सुख मिलने का मौका आया तो वो ठुकरा ठकरा करके और वनवास में चल दिए। अगर वो सच में आपको सुख दे सकते, मुझे सुख दे सकते, तो खुद भी सुख ले सकते थे, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। लेकिन उन्होंने सुख को स्वीकार नहीं किया। सुख को स्वीकार किया, सच पूछे तो उनकी डिक्शनरी में सुख और दुख में कोई फर्क ही नहीं था, तो स्वीकार अस्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है। जैसा सुख है वैसा दुख है, जैसा दुख है वैसा सुख है, दोनों एक ही है। आगे के दु को सु में बदल दीजिए, सु को दु में बदल दीजिए, बाद में तो ख ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। तो अब आप थोड़ा सा तार्किक रूप से सोच करके देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सुख की कामना नहीं की, सुख की चाहत नहीं रखी और न उसके लिए कोशिश की, तो आपको क्या लगता है कि वो हमें दे सकते हैं या हमारे लिए वो चाहेंगे भी कि मैं इसको सुख दूं, क्योंकि उनके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है। मित्रों, इस पर मुझे लगता है कि हम सबको विचार करना चाहिए और खासकर हर जनरेशन को, लेकिन विशेषकर यंग जनरेशन को तो विचार करना ही चाहिए, क्योंकि उनके सामने अभी जीवन की एक लंबी यात्रा है। यहां तक कि जो यंग जनरेशन यंग एज को पार करके थोड़े से ओल्ड एज में एंटर कर गए हैं, उनको भी इस पर उतनी ही गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक जो अक्षमता है, बीमारियां हैं, वो बहुत बड़े दुख का कारण हमारी बन सकती हैं, बनती ही हैं। उन्हीं को लेकर के हम दुखी होते रहते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर के, रिश्तेदारों के साथ संबंधों को लेकर के, समाज की स्थिति को देख करके, इन सब को लेकर के पता नहीं किन किन कारणों को ढूंढ निकालते हैं हम दुखी होने के लिए। हम कारण ढूंढते हैं दुखी होने के लिए। मैं इस पर कभी आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से आदमी सच में दुख होने के कारण ढूंढता है। काश कि वो सुख के कारण ढूंढ लेता। दुख के कारण तो बहुत कम है, सुख के तो हजारों कारण है। रोज सूरज निकलता है, निकल गया है, निकला हुआ है, सुख का कारण है। सुबह हमारी नींद खुल गई है, हम जिंदगी भर के लिए सोए ही नहीं रह गए हैं, ये हमारे सुख का कारण है। सुख के कारण तो हजारों हैं, लाखों हैं, हर क्षण हैं। दुख के कारण बहुत कम होते हैं। और मजेदार बात है कि वो कम हमारा सबसे अधिक बना हुआ है, और जो सबसे अधिक है उसको हमने अपने जीवन में निरस्त कर रखा है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स की जो स्पेशली जो राम का चरित्र है, राम का जो चरित्र है, खासकर वनवास से जुड़ा जो प्रसंग है, वो इसको बहुत ही बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखता है। दोस्तों, मैं आपसे केवल ये अर्ज करके अब इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं खत्म करना चाहूंगा कि इस पर मैंने इसलिए किताब लिखी है, आप भी बन सकते हैं राम, आप भी बन सकते हैं राम। जिस तरीके से राम ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से निर्णय लिए हैं, जिस तरह से अपने चेतना को लगातार परिसंस्कारित करते चले गए हैं, अगर हम भी करते चले जाएं, हम भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पर्यायवाची ही बन जाएंगे, उससे अधिक बन जाएंगे, लेकिन जहां तक भी पहुंच सके, ईश्वर नहीं बन सकते तो ईश्वरत्व के निकट तो पहुंच ही सकते हैं। तो उसकी पूरी मैंने व्याख्या की है, यदि आप लोग उसमें और इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोग ये किताब ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं लाइफ मैनेजमेंट के इस विषय को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर हम सबको सद्विवेक दे, ताकि हम अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से आगे ले जा सकें और जो कुछ भी हमारे पास है उसे बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर, संभाल कर, रख कर आगे की पीढ़ी को सौंप सकें। तो मित्रों, इसी के साथ ही मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।